अयांश की बात सुनकर विनित ने थूक निगलते हुए अपना फोन निकाला और जल्दी से धीरू को फोन लगाया। उधर धीरू अपने आदमियों के साथ सक्षम को ढूंढ रहा था, तभी अपना फोन बजता देख बोला, दूसरे साहब का है। अब तक तो उनको लगता है पता चल गया होगा कि वो हमारी पकड़ से निकल गया, पर उनको बताया किसने? हम सब ने तो कॉल नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। अब कैसे बताएं इनको कि हमारे आदमी को अपनी जगह मारकर बांधकर हमारे सामने वो बाहर निकल गया और हमें पता नहीं चला। दरअसल पुरानी मिल में भीरू और उसके आदमी बैठे पत्ते खेलते हुए बातें कर रहे थे। दिन के वक्त भी वो पुरानी मिल अंधेरे से खाली नहीं थी। तभी धीरू अपने आदमी से बोला, जा रे चाय का इंतजाम कर, 12 बजने को है, आज तो चाय भी नहीं पी सुबह से। भाई खाने का टाइम है, खाना ही ले आऊं? तुझे चाय का बोला है ना, तो जाकर चाय लेकर आ, अपने पीछे खड़े आदमी की ओर गर्दन घुमाकर धीरू बोला। जी भाई जाता हूँ। तभी धीरू पत्तों की ओर देखते हुए बोला, किसी ने उसको देखा क्या? हमारे हुक्म का इक्का है वो, उस पर भी तो नजर रखनी जरूरी है। सही बोला भाई, काफी देर से देखा नहीं, अभी देख कर आता हूँ। पत्ते खेल रहा एक आदमी अपने पत्ते टेबल पर रखकर उठने लगा कि धीरू बोला, तू कहाँ, तू पत्ते खेल, ये है ना चाय लेकर आने से पहले जाते जाते उसे भी देख जाएगा, जा रे देख कर आ, वैसे भी इसको पत्ते खेलना नहीं आता, अभी तो खेल शुरू हुआ है, मजे आने लगे, उठा अपने पत्ते। जी भाई, और सब हंस पड़े। मैं पहले उसे देखता हूँ, फिर चाय लाता हूँ सबके लिए, बोलकर वो पीछे खड़ा आदमी सक्षम को देखने चला गया। जैसे ही सक्षम के पास पहुंचा, सक्षम अपनी गर्दन झुकाए बैठा था। जैसे ही वो सक्षम को देखने के लिए झुका, उसी पल सक्षम ने उसकी गर्दन पकड़ उसे घुमाकर अपने पास नीचे गिरा लिया और मुंह हाथ दबाते हुए अपनी बाहों के बीच उसे पकड़ उसकी गर्दन झटका दी, यानी कि मार डाला। सक्षम ने उसे छोड़ा तो वो नीचे गिर गया। सक्षम मुस्कुराते हुए चेयर से उठा। वो पहले ही कोशिश करके खुद को रस्सियों से आजाद कर चुका था, बस ताक में बैठा था कि कोई आए और वो अपने प्लान को अंजाम दे। धीरू की चाय लेकर आने वाली बात सुन सक्षम को मौका मिल गया और उसे वही वक्त सही लगा वहां से निकलने का। अंधेरे के बीच कहां किसी को खबर होने वाली थी, तो उसने मौके पर चौका मार दिया, अपनी जगह उस आदमी को बिठाया, बांधा और फट से धीरू और उसके आदमियों के सामने से निकल गया। गया क्या वो चाय लेने? धीरू बोला। हाँ भाई अभी निकला है ना, तो बताकर नहीं गया? बताकर क्या जाना था भाई, आपने चाय लाने को कहा था चला गया, अभी उसे देखकर आया था, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो भाई सही है ना, तभी तो देखकर चला गया, कुछ गड़बड़ होती तो आवाज देता बताता, आप पत्ते खेलो, धीरू के सामने बैठा आदमी बोला। धीरू हंसते हुए, लगता है आज तेरा हारना तुझे अच्छा लग रहा है। भाई खेल शुरू हुआ है, अभी देखते हैं क्या होता है, वैसे आपसे जीत पाना कहाँ मेरे बस की बात, बस कोशिश कर रहा हूँ। तो कर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। क्या धीरू भाई, आप भी ना खुद को हराने के लिए खुद ही आशीर्वाद दे रहे हो, सामने बैठा आदमी पत्ते फेंकते हुए बोला और सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद धीरू पत्ते छोड़ उठा और बोला, ये चाय लेकर क्यों नहीं आया अब तक? हाँ भाई इतना वक्त तो नहीं लगता, लेकर ही आनी थी, इतने वक्त में खुद बनाकर लाता तब भी आ जाता, पता नहीं कहाँ रह गया, बाहर की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा। और क्या, अब तो मैं भाई से हार भी गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था, धीरू के साथ खेल रहा था वो आदमी बोला। मैं देख कर आऊं भाई कहाँ रह गया, तीसरा आदमी बोलता है। रहने दो, तुम तीनों चलो अपना काम करो, उठो उसे खुराक देने का टाइम हो गया है, तब तक चाय भी आ जाएगी, फिर मजे से चाय पियेंगे, धीरू बोला और सब जहां सक्षम को रखा था उस साइड चले गए। चारों उसके पास गए तो धीरू कुर्सी पर बंधे उस आदमी के पास जाकर बोला, ये सोता बहुत है ना? हाँ भाई सच में बैठे बैठे भी सो लेता है, अब उठा दूं? दूसरा आदमी आगे आते हुए बोला, लारे पानी, लगता है होश नहीं, और खुराक देने से पहले होश में होना जरूरी है इसका, तभी तो मजा आएगा, बोलकर धीरू ने उसके बाल पकड़ सिर पीछे की तरफ किया। तभी लालटेन की सीधी लाइट उस पर पड़ी तो धीरू जोर से बोला, रुको, अरे ये तो अपना आदमी है, वो कहाँ गया? ये सुनते ही तीनों आदमी फट से आगे आए और अपने आदमी को देख बोले, हाँ ये तो अपना आदमी है, वो कहाँ गया? ये तो चाय लेने गया था। तभी धीरू ने अपने आदमी को खोला, खोलते ही वो लुढ़क कर नीचे गिर गया। धीरू ने उसके गले पर हाथ रखकर देखा और अपने बाकी आदमियों की ओर देखकर बोला, इसे मारकर वो भाग गया यहाँ से। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। धीरू हड़बड़ाते हुए नीचे से उठा और बोला, चलो ढूंढो उसे, जल्दी पकड़ो, अगर वो हाथ नहीं आया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और वो सब भागते हुए सक्षम को ढूंढने पुरानी मिल से निकल गए। धीरू के फोन को बजता देख उसके आदमी उसको फोन उठाने को कहते हैं। धीरू ने फोन उठाया और धीरे से बोला, हाँ साहब, कब से फोन कर रहा हूँ, उठाया क्यों नहीं, ये बताओ वो तुम सबके रहते निकल कैसे गया वहां से? दूसरी तरफ से विनित उस पर चिल्लाते हुए बोला। तो धीरू ने सब बात बता दी और बोला, साहब हम ढूंढ रहे हैं उसे, जल्द पकड़ा जाएगा, ढूंढो जल्दी वरना तुम सबका नामो निशान मिट जाएगा, जानते हो ना? इतना कह विनित ने फोन काट दिया। धीरू और उसके आदमी फिर सक्षम को ढूंढने में लगता है। उधर विनित अयांश को बताता है कि सक्षम पुरानी मिल से कैसे निकला। अयांश गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए, आज तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, उसकी मौत भी नहीं, आई एम कमिंग सक्षम वालिया, आज हमेशा के लिए तुम्हारा वजूद मिटाकर रख दूंगा। तभी विनित अयांश की बांह पर हाथ रखते हुए बोला, सक्षम पर तेरा गुस्सा जायज है अयांश, पर उसे सजा देने के चक्कर में ये मत भूल जाना, आरवी उसके पास है और हमें उसे बचाना है उससे, और वो भी सही सलामत, मैं दादू को बोलकर आया हूँ, उसे कुछ हुआ तो दादू खुद को ब्लेम करेंगे, समझ रहा है ना? थोड़ा डरते हुए अयांश ने विनित की ओर गुस्से से देखा और उसका हाथ अपनी बाँह से हटा दिया। मुझे क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सक्षम के किए की सजा देने का हक मैं खुद को देता हूँ, तो इसके साथ साथ मैं आरवी को बचाने का हक भी खुद को देता हूँ। किसी की इतनी औकात नहीं जो उसे दर्द दे सके, क्योंकि उसे मिलने वाले दर्द का नाम भी अयांश मेहरा है, ना कि सक्षम वालिया। सामने देखते हुए ये सुन विनित नामे सिर हिलाता है और मन ही मन खुद से कहता है, सक्षम के साथ है आरवी, उसे बचाना भी है इसको। सक्षम के प्रति नफरत समझ आती है, पर आरवी के प्रति नफरत की वजह क्या है? सक्षम वालिया तो नहीं हो सकता है। अयांश, आरवी के लिए तुम्हारी इस नफरत के आगे उसके लिए जो कभी मोहब्बत थी वो तो दब गई। काश इस बेहिसाब नफरत पर आज वो मोहब्बत भारी पड़ जाए। आज तो उसे बचा ही नहीं, उसे अपना भी बनाए। खिड़की से बाहर देखते हुए इधर अयांश आरवी को ढूंढने निकल गया था और उधर सक्षम आरवी को लेकर ऐसी जगह पहुंच गया जिसे देख आरवी हैरान हो गई। ये कहाँ आए हैं हम सक्षम, और ये किसका घर है? सक्षम घर का दरवाजा खोलते हुए, अपना ही समझो, और अयान से अभी बचना है ना हमें, तो ऐसी ही जगह पर होना चाहिए जहाँ वो ना पहुँच सके, और ये वही जगह है जहाँ वो नहीं आ सकता है। कम आरवी सक्षम का हाथ पकड़ अंदर जाते हुए, अब तक तो मिस्टर मेहरा को पता लग चुका होगा कि हम दोनों निकल गए हैं उनकी पकड़ से। सक्षम आरवी की ओर देखते हुए, तो लग जाने दो पता, अब वो हम तक नहीं आ सकता है। उसे लगता है मैं डरता हूँ उससे। नहीं डरता तो मैं अयांश के बाप से भी नहीं। गुस्से से
ये सुन आरवी सक्षम के चेहरे की ओर देखने लगी तो सक्षम मुस्कुराते हुए उसे कंधों से पकड़ वहां पड़ी कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, अब अयांश की कोई बात नहीं, हम साथ हैं ना, और डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आरवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोली, थैंक यू सक्षम आने के लिए, अब तुम साथ हो, कोई डर नहीं, मुझे पता था तुम आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सक्षम एक हाथ से आरवी का गाल छूते हुए, कैसे नहीं आता, मुझे तो आना ही था ना वहां, तुम जो थी वहां। सक्षम, हम यहाँ से जाएंगे तो अभी फैमिली सबसे मिलेंगे, मैंने बताया ना तुम्हें आते आते सब, कोई सच नहीं जानता ना तुम्हारी किडनैपिंग का, ना इस जबरदस्ती की शादी का। सक्षम वहीं आरवी के पैरों के पास बैठते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, अयांश ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मतलब तुम अब भी मेरी ही हो ना? आरवी हैरान होते हुए, ये कैसा सवाल है सक्षम? सवाल तो है ना, प्लीज जवाब दो। आते वक्त तुमने बताया मुझे सब, उसने शादी की, तुम्हें तकलीफ दी, उसने कुछ और नहीं किया ना तुम्हारे साथ? सक्षम की तरफ देख आरवी नामे सिर हिला देती है, फिक्र मत करो सक्षम, अगर तुम ऐसा वैसा कुछ सोच रहे हो तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, सच। ये सुनते ही सक्षम ने आरवी को खुश होते हुए अपने सीने से लगा लिया। तभी आरवी बोली, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या सक्षम, जो ऐसा पूछा? मैं प्यार तुमसे करती हूँ तो किसी और की कैसे हो जाती? सक्षम आरवी से अलग होते हुए, वो बात नहीं है जान, विश्वास है, पर उसका क्या भरोसा, और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दे सकता, तुम बस मेरी हो, मैं नहीं बांट सकता तुमको, और उसने शादी भी तो कर ली थी तुमसे। जबरदस्ती शादी की जा सकती है सक्षम, किसी को खुद का नहीं बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, जो जबरदस्ती शादी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो बेफिक्र रहो, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके चलते तुम्हें मुझे फिर पाकर अफसोस हो। तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी आरवी, क्योंकि तुमने उससे शादी, हमारी शादी होने वाली थी ना, तो मैंने कौन सी अपनी मर्जी से की, बताया ना तुमको, कैसी बातें कर रहे हो सक्षम, तुम्हारा किडनैप कर लिया, ब्लैकमेल किया, ना करती तो तुमको खतरा था उनसे, वरना मेरे लिए कौन सा आसान था वो शादी करना, सपने किसी और के साथ संजोए, शादी किसी और के साथ हो गई, हाँ तब भी नहीं करनी थी शादी, चाहे मुझे मार देता, पर तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था, उसके घर में आरवी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मिसेज वालिया की जगह मिसेज मेहरा बन गई तुम, वॉट, बनी नहीं बनाई गई सक्षम, और क्या बेफिजूली बातें कर रहे हो, किडनैपिंग से दिमाग खराब तो नहीं हो गया, या उन गुंडों ने सर पर वार कर दिया, जो बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, उस शादी का कोई मतलब नहीं, मजबूरी थी, झूठी थी, कोई मायने नहीं उसके, सच इतना है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कह रहे हो उनकी बातें नहीं करनी, खुद क्या कर रहे हो, वही बातें लिए बैठे हो, अपनी तो जैसे कोई बात ही नहीं, आखिरी बार कह रही हूँ, मिस्टर मेहरा ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके बाद मैं तुम्हारे लायक न रहूँ, समझे, तो फालतू में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है ऐसा वैसा कुछ भी सोच के, आरवी सक्षम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली कि तभी सक्षम ने उसका चेहरा कसकर अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देख बोला, हाँ हो रहा है मेरा दिमाग खराब, क्योंकि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, अयांश ने मेरे साथ जो किया मुझे गम नहीं, पर तुमसे मुझे छीना, मुझे बर्दाश्त नहीं, कैसे वो मेरे प्यार को अपनी बीवी बना सकता है, कैसे तुम उससे शादी कर सकती हो, कैसे, तुम पर सिर्फ मेरा हक, सिर्फ मेरी हो तुम, मेरी सक्षम वालिया की। ये सुनते ही आरवी की आंखों में नमी उतर आई। सक्षम को ऐसे रिएक्ट करते देख आरवी हैरान हो गई, सोचा नहीं था आरवी ने सक्षम उससे ऐसे सवाल करेगा, ऐसे बात करेगा, मानो उसे भरोसा ही न रहा हो उस पर, और ये बात आरवी को बहुत हर्ट कर रही होती है, इतनी हर्ट कि वो शायद खुद ही बयान ना कर पाए। तभी वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, वहां मिस्टर मेहरा कहते हैं उनका मुझ पर हक है, यहाँ सक्षम वालिया मुझसे कहता है तुम पर मेरा हक है, मतलब मेरा खुद पर कोई हक नहीं, जो आए वो कह जाए तुम मेरी हो, जैसे मेरा तो खुद को कोई वजूद रहा ही नहीं। सक्षम ये सुन आरवी को छोड़ नीचे से उठ गया और आरवी की तरफ पीठ करते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कहूंगा ना कुछ पूछूंगा, बस इतना बता दो सच सच, तुम अब भी मेरी हो ना, सिर्फ मेरी, उसने तुम्हें टच तो नहीं किया। ये सुनते ही आरवी की आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क कर आ गए। वो अपनी आंखों के किनारे साफ कर कुर्सी से उठी और बोली, टच तो किया है मिस्टर मेहरा ने मुझे, और मैंने भी उनको छुआ है सक्षम। इतना सुनते ही सक्षम का जबड़ा गुस्से से कस गया, वो कैसे कर सकता है, कैसे छूने दिया तुमने उसे, और तुमने क्यों छुआ उसे। इतना बोलते वो आरवी की तरफ घूमा और आरवी के गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे वो वापस कुर्सी पर जा गिरी। ये देख आरवी गाल पर हाथ रखे सक्षम की ओर गुस्से से देखती है कि तभी सक्षम ने उसे कंधों से पकड़ सामने खड़ा किया और फिर चिल्लाते हुए बोला, मैं काफी नहीं था या मंडोल गया था तुम्हारा। ये सुनते ही आरवी सक्षम पर चिल्लाई और एक जोरदार चांटा उसकी गाल पर जोड़ा, जिसकी गूंज सक्षम के थप्पड़ से भी ज्यादा थी जो उसने अभी आरवी को मारा था। तभी आरवी उसकी कॉलर पकड़ कहती, मन तो नहीं बदला था सक्षम मेरा, और हाँ तुम ही काफी थे मेरे लिए, सिर्फ तुम, इसलिए जब वो पास आए मुझे तकलीफ देने ताकि मैं उनके खिलाफ न जाऊं, तो कभी कलाई पकड़ी तो कभी मुंह मेरा, जो मैं उनसे बगावत न कर सकूं। फिर मैंने खुद को उनसे बचाने के लिए उनको छुआ, कभी उनको खुद से पास आने के लिए रोका अपने हाथ से, तो कभी धक्का दिया, पर जैसा तुम सोच रहे हो ना फिलहाल एथिकल, वैसा छूना मेरे और मिस्टर मेहरा के बीच नहीं हुआ। तुम पागल हो गए हो सक्षम वालिया जो इतना बेहुदा सोच रहे हो, मैं उनके घर में थी तुम्हारी वजह से, ताकि तुम्हें वो कोई नुकसान न पहुंचाए, वरना मैंने मना भी किया था हारून की बात को और उनके घर से भागी भी थी। मिस्टर मेहरा के प्यार में नहीं बनी पड़ी हुई थी, ना ही मर रही थी उनसे शादी करने को, और ना ही उनके घर में खुशी खुशी अपनी मर्जी से ठहरा दिए बैठी थी, कैदी बनाकर रखा था मुझे, कैद, और वो कैद मुझे तुम्हारे कारण ही मिली। सवाल मुझसे कर रहे हो, सवाल तो मुझे करने चाहिए कि ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच कि एक दूसरे के लिए जान देने वाले एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। दोस्त थे ना आप दोनों, तो अचानक दुश्मनी की दीवार कैसे बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसने पल में सब कुछ बदल कर रख दिया। सब कुछ बोलो, सक्षम को झटक कर छोड़ते हुए, क्रमशः